ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے سمن. جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ شاید جنجوعہ صاحب برطانیہ کی فضاؤں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. سمن اس وقت برطانیہ کی فضاؤں سے ایک تجزیہ نگار ریڈیو اپنا ٹی وی کا پروگرام وہ خود کرتے ہیں, خود انالائز کرتے ہیں. انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. بڑے بڑے یہ جو پروگرام ہیں, بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر کے پبلک کے سامنے لاتے ہیں. سمن وہ انفارمیشن کی حد تک وہ چیزیں ساتھ لاتے ہیں, باقی ان کا ذاتی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. انفارمیشن کی حد تک جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی اپنا لے کے آتے ہیں اور پبلک کے سامنے رکھتے ہیں, بلکہ پبلک کے سامنے کیا پوری دنیا کے سامنے انالائز کر کے رکھتے ہیں. میری مراد ہے شاید جنجوعہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنجوعہ صاحب, ہم آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کو اور آپ کی جتنی ٹیم اور آپ کے جتنے سامعین ہیں سب کو برطانیہ کی فضاؤں سے میرا بہت بہت سلام.
جنجوعہ صاحب, چونکہ برننگ نیوز سی ڈیفینیٹ آپ نے بھی کوئی پروگرام بنایا ہوگا, بلکہ آپ بنا چکے ہوں گے اور اس کو آپ نے رکھا ہوگا اچھے موقع کے لیے. یہ جو مولانا صاحب کا دھرنا تھا اور بڑی خاموشی سے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہاں قرآن پاک پڑھا جاتا رہا, جو ہے وہ فٹ بال کھیلا جاتا رہا, بہت سارے بڑا پرامن احتجاج جو ہمیں نظر آیا جو میڈیا نے دکھایا, اور اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے اور جو ہے وہ دو دو تین دن مارچ ہوئے اور احتجاج ہوئے, کنٹینر بنے. اور اس کے علاوہ اب نواز شریف صاحب کا بھی جو باتیں چل رہی ہیں, این آر او ہو گیا, این آر او نہیں ہوا, 50 روپے کے اسٹام پر یہ سارا کچھ ہوا, گارنٹی جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹام پر ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ واپس آئیں گے. میں چاہوں گا آج کی یہ برننگ چیزوں کو, میں چاہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میڈیا پر آ رہی ہیں کہ نیب کی باتیں بھی چل رہی ہیں, میں چاہوں گا ان چیزوں کو آپ انالائز کریں.
سب سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا تو اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنا اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے مختلف ٹی وی چینل نے اور بلکہ کچھ خاص ٹی وی چینل نے جو ایک آدھ شخصیت ہے ان کے اپنے نام پہ ہے بنا ہوا, تو نام کی ابریویشن کی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کے نام پہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ ایک مسلسل پروپیگنڈا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ مولانا فضل الرحمان یہ ایک ناکام قسم کے سیاستدان ہیں, ایک ایسے چھوٹے مولوی ہیں کہ جن کے نہ کوئی پیروکار ہیں, نہ کوئی ان کو ماننے والا ہے, نہ کچھ ہے, وہ بس ایک بددا قسم کا بندہ ہے. جب یہ آتا ہے تو اسے صرف اقتدار کی بھوک ہے, تو وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, یہ ایک تصور تھا. اور چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بنیادی زبان ہے وہ پشتو ہے, اور ان کے جو فالوور ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح بیسیکلی اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے پٹھان لوگ ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ چونکہ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں تو ان کے ساتھ اور ان کے والد کی وجہ سے انہیں خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک اور اسلام آباد اور لاہور, ان شہروں کے اندر بڑی تعداد میں فالو کیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے مدرسے, بڑے بڑے جو ہیں وہ اس طرح کے دینی اسکول جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے نیٹ ورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اب ہوا بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران پاکستان میں ایسی تبدیلیاں ہوئیں اور شوکت عزیز ٹو جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو وہ انہوں نے اس طرح کی تبدیلیاں کی جس کے اندر خیبر پختونخوا کے تعلیمی نصاب سے قرآن مجید کی آیات کو نکالنا اور ان کا صرف ترجمہ کرنا, تو ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کر دے اس کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی, اس کی ویریفیکیشن کے لیے تو آپ کی قرآن کی آیات کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ جب یہ تبدیلیاں ہوئی تو مولانا فضل الرحمان اور ان سے پہلے مولانا سمیع الحق, انہوں نے بڑا سیریس لیا اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا, اور ان کے احتجاج 6 مہینے پہلے شروع ہو گئے تھے جس میں لاکھوں کے اجتماع ہوتے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر ان کا کوئی احتجاج, کوئی ریلی دکھانے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اسی طرح جیسے جنرل مشرف کے دور میں شوکت عزیز ون وہ آرڈر جب پاس کرتے تھے تو بیک گراؤنڈ پس منظر میں آرڈر کسی اور کا ہوتا تھا, تو آج بھی ایسا ہے کہ شوکت عزیز ٹو جب یہ اس طرح کی چیزوں کو بین کرتے ہیں تو پس منظر میں تو کوئی اور ہی ہوتا ہے, وہ تو سب کو پتا ہے, اس کا چونکہ نام نہیں میں لوں گا, اشارہ جب میں دے رہا ہوں تو سب کو پتا ہے. تو جب ان کا یہ دکھایا نہیں جا رہا تھا تو انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن اس لیے لی کہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر مزاحیہ پروگراموں سے لے کر خود جو مزاحیہ ہاؤس, میں آپ کو بنی گالا کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے مسلسل पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर वजी अजम साहब जो है वो हर रोग तजही का मेज गुफ्तगू फरमाते हैं, और ये एक मामूल बन गया था जिसको उनके जो चमचे कड़छे हैं वो बड़े बड़ा एंजॉय करते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि कई नाम है वो छोटे छोटे जिनके साथ जिन पर इल्जाम है कि उनके जो है वो मखसूस किस्म की लाबी है और वो मखसूस किस्म के जो है वो जिंदगी के नजरियात हैं उनके, और उनके जो है वो अफाल भी डिफरेंट किस्म की हैं, तो वो लोग इन चीजों से बड़ा महजूज होते हैं। और फिर फैसल वाडा से लेकर ये सारे लोग जो है इनका एक ही मकसद था कि मौलाना के ऊपर तानो तशनी करें और उन्हें जो है ना वो ऐसा साबित करें कि वो मौलवी हैं और वो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ हैं, वो पाकिस्तान को धकेल के पत्थर और पहाड़ों की जिंदगी जो है ना वापस गारों की जिंदगी में लेके जाना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरने का ऐलान किया तो ये मीडिया कह रहा था कि वो धरना करेंगे ही नहीं, इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम तो जो है वो कंटेनर उन्हें ऑफर करेंगे अगर वो आए, हम उन्हें हलवा ऑफर करेंगे, तो हलवा आपको पता है कि कोई बुरी चीज नहीं है सर्दियों में, तो हलवा एक जिस्म में एक जान डाल देता है। तो लोगों ने कहा कि इमरान खान साहब तो वाकयातन जाहिर सच बोलते हैं, सच्चे इंसान है, तो वो वाकयातन ऐसा करेंगे, लेकिन लोग कहते थे कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी पेशकश कर दी है लेकिन मौलाना फजल रहमान नहीं आ रहे, और फिर जब वो आएंगे तो उनका मतालबा क्या होगा। ये दो चीजें थी जो टीवी के ऊपर जिन्हें सेकंड्स दिए गए और उन्हें दिखा मौलाना फजल रहमान का मौकफ नहीं दिखाया जाता था, लेकिन ये चीजें दिखाई जाती थी जो उनके ऊपर एतराजात होते हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब एन अपने वादे अपने अल्फाज के मुताबिक कश्मीर का अलम लेके और फिर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच आए। तो जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसी सूरतेहाल थी कि इन्हें ये तवक्को थी कि ये जो मार्च होगा इसकी जो तादाद होगी वो आपको पता है कि 2014 में हजूर शेखुल इस्लाम वो जो आप कैनेडा चले गए हैं तो उनके बराबर होगी। लेकिन हुआ ये कि जब ये इजतमा हुआ ये लोग मार्च में आए आजादी मार्च के नाम पे तो इनकी तादाद तो उनसे 500 गुना ज्यादा थी। अब इन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि उनके साथ जो उनकी तंजीम है जिसके डंडे दिखाते थे कि ये डंडे बरादर हैं वो उनकी दरअसल सिक्योरिटी तंजीम है, तो ये कहा जाता रहा कि वो बहुत बड़ी दहशत गर्द तंजीम है, उसके ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी और कहा कि नहीं इस तरह के सोटों लोटों को हम जो है इस्लामाबाद में नहीं आने देंगे, ये दहशत गर्द लोग हैं, ये मार गिराओ जलाओ और इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे पाकिस्तान दुनिया में बदनाम होकर रह जाएगा। और फिर ये है कि दबे लफ्जों में वो लोग जो मौलाना फजल रहमान से उनके अकीदे या उनकी शक्ल और सूरत की वजह से नफरत करते हैं, कभी उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का मौकफ सुना ही नहीं है। वो कहते थे कि ये मौलवी तो बड़ा मुतशद्दद हो गया है, इससे पहले जो धरने हुए थे उसमें तो सिर्फ 21 लाशें गिरी या 70-80 बंदे जो है वो अपाहज हुए, लेकिन अब देखना अब यहाँ पे तो कई सौ लाशें गिरेंगी और मौलाना फजल रहमान इन लोगों को मरवा के खून खाबा करवा के जो है वो इस्लामाबाद छोड़ेंगे। लेकिन हुआ ये कि वही डंडा बरदार वो भी मौलाना फजल रहमान साहब के थे, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि उन डंडा बरदार लोगों ने पुलिस और डीएसपी के अफिसरों को कुट लगाने की बजाय उन्होंने सिर्फ इस जो अपना धरना है उसको मैनेज करने का काम किया, और वो जितने दिन इस्लामाबाद में बैठे वहां पे किसी किस्म का कोई खूनी वाकया बल्कि किसी किस्म का कोई वाकया पेश ही नहीं आया। वो लोग जो है वो ख्वातीन भी साथ नहीं लेके आए थे, उनके इस धरने में कोई डांस नहीं होता था, कोई जो है वो घुंघरू बांध के नाचता नहीं था, ना उनकी कोई जमात का बंदा, जैसे आपको पता है कि मिनाजुल कुरान के वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अबासी साहब, वो बड़ा अच्छा डांस उन्होंने किया, बैली डांस था उनका और ब्रेक डांस था, तो यहाँ पे किसी ने कोई डांस नहीं किया। दुरूदे पाक पढ़ा जाता, जिक्र अज़कार होता, कुरान मजीद की महफिलें होती, लोग जो है वो क्रिकेट भी खेलते, लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के फुटबॉल खेलते, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये एक बड़ी अजीब बात थी कि वो इतना धरना भी लेके आ गए लेकिन उन्होंने कोई एक्सट्रीम पोजिशन नहीं ली। वो जब यहाँ पे आए तो वो ऐसा लगा कि वो तो जिसे लोग हम समझते थे कि ये बंदा ऐसे ही है वैसे ही है, वो बंदा तो एक बड़ा मदब्बर किस्म का एक सियासी रहनुमा निकला जिसने ना तो कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया ना जो है वो धमकियां दी, ना कब्रें खोदी, कुछ भी नहीं किया। उसने सिर्फ एक मुतालबा किया और उनके एक बल्कि दो मुतालबात किए, और दो मुतालबात जो है वो बड़े सुनने वाले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब से इस्तीफा चाहिए, दूसरी बात इससे मुंसलिक उन्होंने ये कही कि हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं और उन इदारों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये महसूस जो कर रहे हैं कि ये इदारे किसी एक पार्टी की बी टीम बन के रह गए हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात इमरान खान साहब से नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात जनरल बाजवा साहब से होंगे। गोया उन्होंने पैगाम दे दिया कि उनका जो असल मुतालबा है वो पहला नहीं वो दूसरा है, क्योंकि अगर पहला मुतालबा होता तो वो इमरान खान साहब और हुकूमत से मुज़ाकरात की बात करते, लेकिन उन्होंने तो दूसरे मुतालबे के मुताबिक ये कहा कि हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जिन्होंने शौकत अजीज टू इसको मुंतखब किया है और इसको सिलेक्ट किया है। तो आप देखें कि जो इस तरह के बड़े बड़े इदारे होते हैं वो खुद बराए रास्त मुज़ाकरात नहीं करते। और फिर उसकी एक वजह ये भी है कि फैजाबाद के धरने में जो मुज़ाकरात जब पैसे बांटे गए तो उसके ऊपर अदालत ने एक्शन लिया, तो फिर उसके उससे ये हुआ कि इदारे का जो वकार है उसके ऊपर धब्बा लगा। तो अब इदारे जो हैं वो बड़े समझदार हो गए हैं, उन्हें समझ आ गई है, सियासी सूझबूझ आई है कि हमने जो अपना सियासी एजेंडा है वो किस तरह लेके चलना है। अब उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन चौधरियों के जरिए की, और वो यकीन दहानी जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे उसकी उसके दो, एक तो मैं ये कहूंगा कि वो किसी बड़े ओहदेदार की जो एक्सटेंशन है वो चाहते थे कि ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए थी। उस एक्सटेंशन के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये अंडरस्टैंडिंग, ये मायाद जो है वो पूरी नहीं की जाएगी, नंबर एक। नंबर दूसरा ये था कि पाकिस्तान को अगर चलाना है तो ठीक है, अगर गलती हो गई है, ये शौकत अजीज जिसको हम लेके आए हैं ये तो पहले शौकत अजीज से कई दर्जे कमजोर निकला, ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं निकला, इसने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की बका इस वक्त खतरे में है। तो अब ये हुआ कि उन्होंने फिर एक जो है वो माजरत दी, गारंटी दी कि हाँ ठीक है, इसको हम एक मखसूस मुद्दत के लिए जो है वो रखेंगे, फिर उसके बाद ये है कि इनके पांव से जमीन खींच ली जाएगी और फिर यहूदी दड़ाम करके गिर जाएंगे। ये वो बातें हैं जो मैं आज कह रहा हूँ, और आप मेरा आज का ये पैगाम, आज का ये तजिया नोट कर लें, और चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद आप देखेंगे कि तवातर के साथ, तरतीब के साथ यही नतायज निकलेंगे और यही खुशखबरी पाकिस्तानी कौम को मिलेगी। आप देखें, बात यह है कि वो, वरना ये कैसे हो सकता था कि मौलाना फजलुर रहमान जैसा इंसान जिसने इससे पहले ये काम नहीं किया, वो एक इतना बड़ा हजारों अद्दे निगाह तक, मतलब आप देखें ना, पहले एक दौर था कि 2014 में मौलवी हजरात के सामने अगर 3,000 बंदा बैठा हो तो उसको कहते थे हजारों का इत्मा, और अगर 10,000 बंदा हो तो उसे ये कहा जाता था कि ये करोड़ों का इत्मा है। तो वो एक एक्सट्रीम थी, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें कि वाकयातन लाखों में लोग थे, और जिस दिन कम से कम हुए बंदे वहां पे भी जो है वो 40-50,000 बंदा बैठा हुआ था। और अगर आप दूसरे धरने की तरफ चले जाएं तो वहां पे आपको पता है कि इब्तदा जब वो एक्सट्रीम थी तो 12,000 बंदा था, और एक वक्त वो भी आया कि 400 बंदा रह गया शेखुल इस्लाम के साथ और बाकी सारे बंदे चल गए। फिर उन्होंने पता है आपको तकरीर की थी कि ये इमाम हुसैन की तरह वापस आ जाओ, इधर बैठो, ये वो जंग है, ये है वो, आपको पता है करबला है, करबला से भाग के नहीं जाते, जो भाग के जाएगा जाहिर है वो आखिरत में उसकी जो है वो सिफारिश नहीं करेंगे बैसीयत शेखुल इस्लाम। तो ये सारी बातें हुई। तो आप देखें कि यहाँ पे मौलाना ने एक्सट्रीम पोजिशन नहीं ली, उन्होंने ऐसी चाल चली कि उन्होंने एक दफा नहीं कहा कि मैंने इन लोगों की बड़ी कोई तरबियत की है, मैं बड़ा मनजम किया, तो ये तो उन्होंने कहा कि ये तो हम तो एक जमात है, सियासी जमात है, हमारा एक सियासी ढांचा है। और यहाँ पे जो चीजें नजर आई कि उन मौलाना साहब के जो मुज़ाकरात करने वाले थे वो भी उनकी अपनी टीम थी, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी अपने थे, बल्कि आप देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले यही कहते रहे कि हमें तो मौलाना का प्लान भी नहीं पता, हमें तो ये नहीं पता कि मौलाना हमारे साथ चलते चलते चौधरियों के साथ मुज़ाकरात में क्यों शामिल हो गए। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हैं, ऑन द रिकॉर्ड हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब जिस तैयारी के साथ आए, जिस टीम को साथ लेके गए, वो काम जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। एक तो वो अश्योरिटी लेके गए जिसकी तरफ मैंने पहला इशारा किया है, इसको ज्यादा अल्फाज में, खुले अल्फाज में ओपन करना ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये अपने मुल्क का और अपने इदारों के साथ वफादारी की अलामत भी नहीं है। लेकिन जो तीसरी बात मौलाना साहब ने कही वो ये कहा कि फाटा के अंदर जो कानून है वो पहले फाटा पे लागू होता था कि आप जो है वो ये काम करें कि वो स्पेशल कवानीन के तहत आप जिसको चाहें दहशतगर्द करार दें और उसको जो है वो ग्वांटानामो बे, उस तरह के जो डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं वहां पे चले जाएं, ना कोई उन्हें रख लेते थे बंदे और वो पता ही नहीं है तादाद हजारों में है जो गुमशुदा बंदे हैं, तो किस कानून के तहत रखा, कोई मुकदमा नहीं है, ट्रायल नहीं है, जो इल्जाम किसी ने लगाया उसके ऊपर बगैर शहादत के सर कलम हो गया या वो उसे वहां पे जिंदगी भर की सजा के लिए रखा हुआ है। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने धरने में आवाज उठाई और अब आप देखें कि इसकी उनकी आवाज को कितना सुना गया। असेंबली के अंदर तमाम सियासी जमातों ने उस कानून को खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्शन लिया और हुकूमत को कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है और सुप्रीम कोर्ट इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उस कानून को ये उसकी तफसीलात मान ली है कि कितने बंदों को डिटेन किया गया है, किस जुर्म के तहत किया गया है और इसकी तफ्तीश कौन कर रहा है, इसकी तफ्तीश का तरीकाकार क्या है। और फिर उन्होंने खुद अदम एतमाद कर दिया कि ये सिलसिला पाकिस्तान में एक जमहूरी मुल्क में ये नहीं चलेगा, इसलिए कि ये इदारों ने अपने हदूद से तजावज करके इस तरह की चीजें बनाई हैं जिनकी पाकिस्तान का आइन और कानून इजाजत नहीं देता। ये आप देखें कि ये वो कामयाबियों का तसलसल है, जो एक शख्स इतना बड़ा इतमा लेके आया, उसने दावा भी कुछ नहीं किया, उसने बाद में भी दावा नहीं किया कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया है, लेकिन जो उस धरने के सम्राट थे वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि ये जो नवाज शरीफ को रिहाई मिली है ये भी किसी हद तक उसी का तसलसल है, वरना हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद बैकफुट पे खड़ी होने को तैयार ना थी। अब आप देखें कि शहजाद अकबर ने बैरिस्टर शहजाद अकबर ने और अटॉर्नी जनरल मंसूर कैप्टन मंसूर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज आधा घंटा पहले, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही कोशिश की है ये साबित करने की कि इस अदालती फैसले में हकूमत को पसपाई नहीं हुई, हकूमत जो है वो उसकी नाक नहीं कटी, अदालत ने हमारी इज्जत रख ली है, बस अब वो एक ही नुक्ता बयान कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो ये नहीं बात मानने के लिए उनका दिल तैयार नहीं है कि अदालत ने उनका जो मौकफ था उसको कंप्लीटली रद करके नवाज शरीफ को कहा है कि तीन मरतबा ये शख्स वीर आजम रहा है, मेडिकल रिपोर्ट सामने है और हुकूमत ने जो 7 अरब रुपए का तावान मांगा ये जो है वो किसी कानून के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई और उसके बाद आप देखें कि तसलसल के साथ मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाज जारी है और उस एहतजाज के ऊपर ना पुलिस ने कोई दावा बोला, ना आर्मी के किसी जो है वो जैली तंजीम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो इससे पता चलता है कि ये शौकत अजीज 2 को ये बात बताने के लिए कि आपकी सिलेक्शन गलत हुई है और जिस तरह सिलेक्शन हुई और आपको बना दिया गया वज़ीर आज़म, इसी तरह ऐन मुमकिन है किसी दिन ये भी हो कि हम डी सिलेक्ट करें और फिर आपको कहें कि जी आप भी चले जाएं वहीं पे जहां पे शौकत अजीज 1 गया था। ये मेरा वो तजिया है, ये मेरे वो अल्फाज हैं, जो किसी को अच्छे लगें बुरे लगें मुझे उससे सरोकार नहीं है, लेकिन मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूं। इन हकायक के ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको ये मेरी बातें समझ आएंगी और जिन्हें ये बातें आज समझ में ना आए वो चंद दिनों के बाद मान जाएंगे कि हाँ पाकिस्तान के अंदर ये तब्दीली आ रही है और पॉलिटिकल स्पेस जो है वो स्लोली स्लोली बढ़ रही है और वो इदारे जो हर बात पे इमरान खान साहब की हर गलत बात को कवर अप करने के लिए आते थे कि हम एक पेज पे हैं, अब वो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। बल्कि पिछले 3 वीक के अंदर एक दफा भी बयान नहीं आया कि हम एक पेज पे हैं। ये मेरा चैलेंज है, अगर आया हो तो मुझे बता दें। हाँ, अब बात रह गई कश्मीर की, तो कश्मीर की सूरत हाल बड़ी पेचीदा है। मैं दयानतदारी से कहूंगा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता, आसफ जरदारी वज़ीर आज़म होता और भारत ये इकदाम करता, तो वो उसके खिलाफ शायद जो काम इमरान खान साहब ने किया है उससे ज्यादा कुछ भी ना कर सकते। ये मेरी दयानतदाराना राय है। ये नवाज शरीफ जरदारी दोनों अगर और सदर और वजीर आजम भी होते, या ये इन दोनों में से कोई एक वजीर आजम होता, तो इनकी हुकूमत भी इससे बेहतर कुछ ना कर सकती। हाँ, मगर मेरा सवाल ये है कि ये बात जेब नहीं देती शौकत अजीज टू को कि वो अवाम को गुमराह करें और अवाम को झूठी उम्मीदें दिलाएं, और इसके ऊपर ये आप जो है वो खुद एक मनसब एक्स्ट्रा लें कि मैं सफीर भी हूं। मतलब ये कि जो सफीर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने उसके ऊपर अदम एतमाद करके कहा कि अब कश्मीर का सफीर मैं हूं। और आप देखें कि पिछले 3 वीक के अंदर उस कश्मीर के सफीर को कश्मीर के ऊपर बोलने की कोई तौफीक नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं किया गया। तो इतना नायल सफीर अगर जिस मुकदमे के अंदर रखा जाए, जिस जमात का, जिस मुल्क का हो, तो उसका बेड़ा गर्क नहीं होना, तो और क्या होना है। ये मेरा एक जो है वो अमूमी तजिया है। इसके अंदर हर बंदे की सोच का अंदाज अपना है। अगर कोई बंदा जो है वो खान साहब से मोहब्बत करता है तो वो कहेगा कि वो बड़े अच्छे कप्तान थे, उन्होंने क्रिकेट प्रति बड़ी अच्छी खेली और वो बड़े मैनेज्ड हैं, बड़े क्यूट हैं और बड़े बड़ा दबंग बोलते हैं। और अगर कोई बंदा नवाज शरीफ का है तो वो ये कहेगा जी नहीं, नवाज शरीफ के पास पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि मेरा तलक ना नवाज शरीफ से है ना इनसे है, इसलिए मैंने जो हकायक बयान किए हैं वो बिल्कुल देख के, आंखों से पढ़ के कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने जा रहा है, वो मैंने आपके इस प्रोग्राम की वसातत से सामईन तक बचाए हैं। और आज मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ कि नवाज शरीफ का दौर खत्म हो चुका। अब पाकिस्तानी कौम को ये सोचना है कि अब पाकिस्तान में नैब किसके पीछे जाएगा, क्योंकि नैब के साथ इससे पहले नैब की सारी तवज्जो शरीफ खानदान पे थी और शरीफ खानदान के साथ उन्होंने जो किया वो जाने और नवाज शरीफ जाने, मुझे ऐसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि मौलम जपा और जो पेशावर में मेट्रो के ऊपर 1 अरब से ज्यादा का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और फिर वो बंदा जो यूरोप से चाइल्ड सेक्स अब्यूज में पकड़े जाने और डिपोर्ट होने के बाद उसने किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में मुलाजमत इख्तियार की और 3 लाख महीने की तनख्वाह पे वो काम करता रहा, और वो बंदे ने किस तरीके से जो है वो सारे सिस्टम को बाईपास करके खान साहब के वसातत से ये मुलाजमत इख्तियार की, तो ये क्या हुआ मसला? इसके ऊपर नैब का जो है वो एक्शन लेता है। और फिर जो है वो आपको पता है कि नैब ने पिछले दिनों एक खबर ये आई थी, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि नैब जो है वो पता है आपको, चेयरमैन नैब एक चीज कहता है कि मैं देखता हूं कि मैं परवेज खट्टक को अगर अगर मैं गिरफ्तार करूं तो उसकी सेहत खराब है, बहुत दुबला पतला, ये ना हो कि कोई हमारे मथे लग जाए कोई चीज। तो वो फिर उन्हें इख्तियार भी नहीं है इस तरह का कि वो पकड़े, चूंकि जब तक उन्हें गो अहेड ना मिले। तो ये लोगों को पता है कि करप्ट लोगों का एक पूरी लिस्ट बनी हुई है नैब के पास, लेकिन उन्हें जितनी इजाजत मिलती है या जितना वो मुनासिब समझते हैं वो उस तरह एक्शन लेते हैं। तो आप ये पिछले दिनों आपको पता है कि उन्होंने नैब ने एक और एक्शन लिया कि 2 शहजादे हैं जिनकी नामालूम जराए से इतनी आमदन है कि उनके पास पाकिस्तान में रेंज रोवर है, बुलेट प्रूफ रेंज रोवर, जो मैं और आप यूके में नहीं अफोर्ड कर सकते। वो 4,500 5,000 cc पेट्रोल इंजन होता है उनका, और अगर डीजल भी हो तो हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो यंग बच्चे शहजादे हैं जिनकी कोई आमदनी का जरिया नहीं है, जो उन्होंने डिक्लेयर किया हो, टैक्स वो अल्लाह जाने देते हैं या नहीं मेरा नहीं ख्याल, और जो जिस जरिए से उन्हें इनकम आती है वो जरिया भी बड़ा अजीब है, कोई पता नहीं है, और इतनी लग्जोरियस लाइफ वो गुजार रहे हैं। तो उनके ऊपर एक्शन हुआ कि उनके अकाउंट में महमूद शाह ने और जो है वो लोगों ने भी पैसे डाले। तो अब लोगों को जब पता चला कि ये तो एक एक किस्म की, मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा ना, मुबैना मैं कह रहा हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का इल्जाम जब लगा, और फिर ये भी कि यहाँ से उन्होंने आपके डेनमार्क से, फ्रांस से, यूके से जो गोल्ड इकट्ठा हुआ था, वो गोल्ड किस तरीके से पाकिस्तान पहुंचा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जबकि वो बंदू ने गोल्ड मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए दिया था कि इलामा साहब, हजूर शेखुल इस्लाम जो है, वो पाकिस्तान दुनिया में मुसलमानों की नई अक़वामे मुत्तहिदा बनाएंगे। और फिर चूंकि वो इस वक्त मौजूदा अक़वामे मुत्तहिदा के मशीर खास हैं, तो उसके ऊपर वो फलस्तीन और कश्मीर में सिहूनी ताकतों की बर्बरियत के ऊपर आवाज उठाएंगे। लेकिन वो शेखुल इस्लाम जो है, वो पता नहीं किसी हिकमत की वजह से वो ना मोदी के खिलाफ बोले, ना वो फलस्तीन के में जुल्मो सितम की जो अंधेर नगरी चल रही है उसके ऊपर बोले, तो वो किसी नामालूम हिकमतों की बिना पे वो खामोश हैं। और फिर ये जब नैब ने कार्रवाई करने का फैसला किया, ये जो असासे हैं साहबजादगान के, उनके ऊपर, तो इसके जवाब में आपको पता है कि मिनहाजुल कुरान ने एक चिट्ठी जो है वो तकसीम की कि ये देखें कि पाकिस्तान की नैब ने तो क्लैरिफिकेशन दी है, क्लीन चिट दी है, और वो लोग जो है वो एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। वो शेयर करने वाले एक बंदे ने मुझे भी भेजी पाकिस्तान हेड ऑफिस से, मिनहाजुल कुरान से, कि जिंजुआ साहब वो आपने ये बात की है, तो देखें हमें तो बिल्कुल नैब क्लियर कर चुकी है। तो जब मैंने उसको देखा, और मैं आपके इस प्रोग्राम की वसादत से लोगों को दावत दे रहा हूँ कि आप उस चिट्ठी को खुलें खोलें और देखें, उस चिट्ठी के अंदर सवाए महमूद शाह, वो जिन्होंने एक बिल्डिंग जो है वो बेची और फिर जो है वो मिनहाजुल कुरान ने खरीद ली, यानी गोया जो है वो घूम घूम, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसको करप्शन की इंतहा कह लें, इसको कुछ भी कह लें। लेकिन मेरी बात यह है कि उन्होंने कंडीशनल बेल दी, बेल आउट किया कि महमूद शाह ने ये बात की है, लेकिन फिल वक्त उसके ऊपर नहीं ले रहे। लेकिन उस लेटर के अंदर ना हसन का कोई नाम है, ना हुसैन का नाम है, ना शेखुल इस्लाम का नाम है, इन तीनों के ऊपर तो बात ही नहीं हुई। तो इन्होंने किस तरीके से ये लोगों को तासर देने की कोशिश की कि हमें तो नैब क्लियर कर चुकी है। नैब क्लियर नहीं कर चुकी, अगर नैब क्लियर कर चुकी होती तो आप इस वक्त कनाडा में ना होते, पाकिस्तान में लोगों को जवाब देते कि आपसे 4 साल हो गए हैं, एक बंदा मसलसल पूछ रहा है कि आपने दुनिया से कितना पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा किस जरिए से पाकिस्तान मुंतकिल किया। आपने पैसा जो है वो पाउंड में इकट्ठा किया, तो कहाँ से आपने जो है वो उसको ट्रांसफर किया पाकिस्तानी करेंसी में, या गोल्ड आपने लंदन में किसको बेचा, और वो जो है वो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो किस रेट पे 8 पे बेचा, 8 कैरेट वाले पे, या किसको बंदे को बेचा, और किस तरीके से ये फंड जो है वो पाकिस्तान गए हैं। ये बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला नैब जो है ये बातें उगलवाएगी, और फिर मैं आपके इस प्रोग्राम की वसात से दुआ करूंगा कि अब जो है वो नैब जो है उसके पास चांस है कि वो और लोगों की तरफ भी देखे, और जो जो लोग करप्ट हैं, हाँ वो अवामी तहरीक के लोग हों जिन्होंने जो है वो, या मिनहाजुल कुरान के लोग हों जिन्होंने कागजी मंसूबे पे अरबों खरबों रुपया लोगों से इकट्ठा किया, और उन मंसूबों का दुनिया में किसी जगह पे नाम भी नहीं है, इनके ऊपर करप्शन का केस चलाएं, या जिसके ऊपर भी करप्शन का केस है, मुझे इससे गरज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के अंदर जो रिकवरी है इस तरह के हराम माल खाने वालों की, उनसे ये पैसा रिकवर करवाएं, और फिर जो है वो अल्लाह करे कि कोई ऐसा वजीर आजम हो जो पाकिस्तानी हो, ना शौकत अजीज 1 हो, ना शौकत अजीज 2 हो। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक तसलसल के साथ बेहतरी की तरफ चल रहा है, और आई एम श्योर कि ये होगा, और इंडिया ने और मोदी ने जो दहशतगर्दी की है, जो बर्बरियत की है, ये पाकिस्तान भी हो सकता है भूल जाए, दुनिया भी भूल जाए, लेकिन जिनके साथ ज्यादती हुई है वो नहीं भूलेंगे, और वो इंशाअल्लाह ताला इसकी आप कश्मीर की आजादी की जंग लड़ेंगे। खा उनके बच्चे पहले भी मारे जा रहे हैं, अब भी यही सूरत हाल है, वो मजबूर हैं, लेकिन जहां जहां पे भी उनका बस चलता है वो चिंगारी जो है वो भड़कती है, और उससे आग लगती है, फिर उसके ऊपर पानी डाला जाता है, ठहराव आता है, लेकिन फिर वो किसी और जगह पे जाके जो है वो ये काम शुरू हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये उतार चढ़ाव का खेल है, और अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि वो मजलूम लोगों के लिए जो है वो अपनी रहमत नछावर करेगा, और जालम इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेगा।
जंजुआ साहब माशाल्लाह आपने बड़ी तफसील से सारी चीज़ों को एनालाइज किया, लेकिन एक खबर जो मेरे पास है वो एक बाई पोस्ट मुझे एक ملا ہے، ایک پیپر ملا ہے، اور جس پہ ایک غالباً آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں یہ کتنا پرانا ہے، جس میں ذکر ہے کہ جو ہے عوامی تحریک کو جو ہے وہ اب 15 سال ہو گئے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 2004 کی بات ہو رہی ہے یا 2002 کی بات ہو رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ طاہر القادری صاحب جواب دو، اور اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں بچتے ہیں کعبہ کے بھرمن. تو یہ ایک مصطفی انقلاب پر اکٹھا کیے جانے والا کروڑوں روپیہ کا سرمایہ کہاں گیا؟ میں ایک سوال پڑھ دیتا ہوں،
اربوں روپیہ
یہاں کروڑوں لکھا ہوا، جہاں پہ لکھا ہوا میناج فاؤنڈیشن.
میں وہ لکھنے والے، میں آپ کو ذرا تھوڑا سی قطع کلامی معاف، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مانچسٹر کے اندر جب یہ آخری، آپ کو پتا ہے نا، یہ 7 دفعہ آخری مارکا انقلاب کی اپیل ہوئی ہے فنڈز کی، 7 دفعہ ہر دفعہ یہ کہا گیا یہ آخری اپیل ہے. تو اس اپیل میں آپ کو ایک بڑی مزاحیہ بات کروں گا، اور چونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ محبت بھی کرتا ہوں حضور شیخ الاسلام سے، تو ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ
سوال کرنے والا تھا وہ منی لانڈرنگ میں تو آپ تو نہیں تھے شہزادوں کے ساتھ، چونکہ آپ کی بھی تصاویر ان کے ساتھ میں نے دیکھی ہیں.
ہاں ظاہر ہے میرے تو وہ دوست ہیں حسن اور حسین، وہ مجھے اتنا جانتے ہیں جتنا وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جب پیسے کبھی مناج ہسپتال کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ کشمیر میں زلزلہ زدگان کے نام پہ، کبھی جو ہے وہ انقلاب کے نام پہ، جب یہ پیسے مثلا لوٹ لوٹ کے لوگوں کو کنگال کر دیا، تو اب لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. تو لندن میں ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو وہاں پہ حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہ وہ بات کرتے ہیں کہ مرد چونکہ کنگلے ہو چکے ہیں، تو حضور نے فرمایا، حضور شیخ الاسلام نے، کہ آپ ایسا کریں کہ خواتین کو گھیریں، اس لیے کہ خواتین نے پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا ہوتا ہے، مردوں سے تو ہم نکلواتے رہتے ہیں. خواتین یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس اور کچھ نہ ہو تو اپنے زیورات تو ہوتے ہیں نا شادی کے، یا پھر انہیں بچیوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، تو ان کے اوپر نظر دوڑائیں اور ان کو گھیر کے لائیں، ان سے یہ پیسے جو ہے نکلوائیں. تو پھر ان سے نکلوانے کے لیے ایک باجی اپنا کڑا پھینکتی، پھر باقی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین لائی
جو ہوتی ہیں. یہ بات آپ کے سامنے ہوئی؟
میں بالکل آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ گارنٹی سے. بلکہ ایک اور بات کروں گا، اس سے بھی بڑی بات. ایسا ہوا کہ مصطفی انقلاب کے لیے جب اس دفعہ 2014 کا دھرنا ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں آپ نے سب کچھ دینا ہے بے شک، اور پھر انہیں کہا کہ میں اس دفعہ میری لاش واپس آئے گی یا انقلاب آئے گا، میں زندہ کبھی واپس نہیں آؤں گا 2014 کے دھرنے کے بعد. لیکن آپ ظاہر ہے وہ زندہ واپس آ گئے ہیں، آپ اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے. لیکن وہاں پہ
زندہ بھی لاش ہو سکتی ہے،
آج زندہ لاشیں نہ ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ کوئی زندگی میں کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ مصطفی انقلاب تو پیغمبرانہ مشن ہے، اور آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پیغمبرانہ مشن سے کوئی بندہ ریٹائرمنٹ لے لے گا؟ یعنی وہ پیغمبرانہ مشن کہ جس کے لیے جینا مرنا کام کرنا اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے، اس سے بندے نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. تو یہ تو ایک بڑا عظیم، آپ کو پتا ہے کہ مناج القرآن کے سارے لوگ اندر سے بڑے فیڈ اپ ہیں، وہ شرمسار ہیں، مایوس ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ قبلہ حضور بھاگ گئے ہیں. یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، میں نام تو کسی کا کبھی نہیں بتاؤں گا،
صاحب یہ
لیکن وہ سارے کہتے ہیں یار ہمیں تو امید نہیں تھی کہ کبھی یہ ہوگا، اور آپ 4-5 سال سے مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے، اور آج ہمیں یقین ہوا کہ یار یہ تو سارا درن تختہ ہو چکا ہے، یہ تو سارا ایک مافیا تھا، ایک انٹرپرائز تھی، ایک جو ہے یہ ایسی کمپنی ہے کہ یہ کمپنی بزنس کمپنی بن چکی ہے. اگر اس کے اوپر علیحدہ موضوع ہو نا کہ انہوں نے کیا کیا بزنس کھول رکھے ہیں، تو آپ شاک ہو جائیں گے.
جنجوا صاحب
وہ بات رہ گئی تھی میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا، بڑی خوبصورت بات. یہ قبلہ کی بات ہے تو قبلہ کی باتیں آپ بھی سنیں. قبلہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں یہ مرد جو ہیں ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں جس سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کنگلا ہو گئے ہیں، پہلے ہی آپ نے ہم سے بڑے پیسے لے لیے، اب اور آخری مارکیٹ انقلاب کے لیے کدھر سے دیں؟ تو 2-2, 4-4 ہزار دیتے ہیں، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. ہمیں تو 50-60 ہزار پاؤنڈ کم از کم اگر ایک بندہ دے، اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ دیں، تو پھر اس کی ضرورت ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر قبلہ حضور نے ایک بڑی خوبصورت بات سنائی، اور یہ بات جب میں سنتا ہوں تو میں ہنس پڑتا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں. قبلہ نے فرمایا کہ یہ جب یہ بات ہوئی تو وہ جو آپ کی باجی غزالہ ہیں وہ بولی، اور انہیں کہا کہ ابو جی देखें ये लोग जो है वो अपने मकानों के लिए बैंक से कर्जा भी तो लेते हैं ना, मॉर्गेज 50-50 60-60 हजार पाउंड, लाख लाख की मॉर्गेज लेते हैं, तो ये इस तरह बैंकों से कर्जा लेके क्यों नहीं दे देते मुसवी इनकलाब के लिए। तो इस पर किबला ने कहा कि मैं बड़ा खुश हुआ और मैं हैरान हो गया कि देखें बेटी ने कितनी खूबसूरत बात की है, और आप भी देखें कि ये सोच और फहम किधर से आ रहा है और किस तरीके से ये जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। तो इस पे अमल करते हुए मैनचेस्टर के एक हमारे साथी हैं, उन्होंने बड़ा कर्जा लिया और मुसवी इनकलाब में लगा दिया, और जब वो नहीं उन्होंने कर्जा लिया और उसमें लगा दिया जो मिराज मॉडल सिटी था जिसमें मस्जिद अक्सा बननी थी, वो पता नहीं बड़ी बड़ी मस्जिदें दुनिया की बननी थी। तो वो जब प्रोजेक्ट जो है वो कागजों से अलावा आगे ना बढ़ा, शुरू ना हो सका, कुछ भी ना हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमने बड़े पैसे दिए थे इसके अंदर, तो वो हमारे पैसे वापस दे दें अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना। तो वो उस बंदे ने बड़े चक्कर काटे, कभी एक लामा के पास कभी दूसरे लामा के पास, तो कोई बंदा उन्हें बात का जवाब नहीं देता था। एंड पे उनकी नौबत ये पहुंची, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब वो घर की मॉर्गेज अफोर्ड नहीं होती क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा ले लिया था, और जब वो मिराजुल कुरान के पास पहुंचा तो ये चलो और कुछ नहीं है मुझे 20,000 पाउंड ही वापस दे दे ताकि मैं अपनी मॉर्गेज की जो डाउन पेमेंट है वो डाल के मॉर्गेज बराबर कर लूं या कुछ कम कर लूं। तो किसी बंदे ने उसकी टके की मदद ना की और उस वो बंदे की नौबत ये पहुंची कि वो मकान रिपोजेस होने पे आया और दोनों में तलाक हो, मियाँ बीवी में। तो यहाँ तो मुस्तफी इनकलाब जो है वो उसने लोगों के घर तबाह कर दिए हैं मुस्तफी इनकलाब के नाम पे, मिनार सिटी के नाम पे, और इस तरह के मुख्तलिफ कागजी फ्रॉड प्रोजेक्ट के नाम पे अरबों रुपए लूटने वालों को जरा भी एहसास नहीं है कि उनके साथ जो मखसूस लोग जो मुखलस तरीन लोग चले हैं अब उनके क्या हालात हैं। अब आप देखें कि ये लोग बड़े मायूस हैं, इन्हें पता है कि यार वो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, जो मजहबी खला था वो मौलाना खादम रिजवी ने पूरा कर दिया, और जो सियासी हमारी एक चीज रह गई थी कि पत्थर नहीं टूटा और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये भी मेरे ही अल्फाज हैं बाय द वे, लेकिन ये भी मौलाना फजल रहमान के धरने ने उनकी इस जो ये एक चीज थी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया उसका भी धर्म तख्ता कर दिया है। तो आप तो इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जो ये आवाम के सामने पेश कर सके, नथिंग।
जिंजुआ साहब, मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा। आपने जो जिक्र किया नैब का जिक्र किया, तो ये जो तहरीर है मैं इसका थोड़ा सा हवाला दे दूं। मुस्तफी इनकलाब पर गठे किया जाने वाला करोड़ों रुपए का सरमाया कहाँ गया, सवालिया निशान। मिनाज फाउंडेशन इंग्लैंड के प्लेटफॉर्म से जो लाखों पाउंड सालाना चैरिटी के नाम से इकट्ठे किए अब तक कहाँ खर्च हुए। कनाडा में इमिग्रेशन हासिल करने के लिए लाखों डॉलर कहाँ से आए। तुम्हारे साहबजादों की इंग्लैंड और कनाडा में तालीम का खर्च कहाँ से आता है। इस्लामाबाद में फार्म हाउस, लाहौर में ठोकर न्याज बेग, वलनेशिया पार्क में प्लाट किसके हैं। हाफिज शौकत अवान को जर्मनी से अगवा करने के लिए गुंडे किसने भेजे। तहरीक अखबार बंद क्यों हुआ, इस पर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है। तैरो कादरी साहब, कायदे इनकलाब तक का मुसन्नफ सलमान भट्ट अब कहाँ है, उसने जाते हुए आपको गालियाँ क्यों दी, सवालिया निशान। लाहौर की अदालत आलिया के जज ने अपने फैसले में तैरुल कादरी के बारे में फैसला सुनाते हुए क्यों लिखा कि ये शख्स मैं मोहसिन कुश झूठा, शोहरत का भूखा, दौलत का बेचारी और लालची है। पाकिस्तान के 15 करोड़ अवाम ने अवामी तारीख पर बदअदमादी का इजहार क्यों किया। जंग में तुम्हारे बेटे की बुरी तरह नाकामी के बाद अब कौन सा पत्ता फेंकोगे। क्या नवाज, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मिनाजुल कुरान की क़यादतों में कोई फ़र्क बाकी है जिन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क और कौम को लूटा और अवामुल नास को इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाया। तुम कब तक ख्वाब सुनाकर कौम को और अपने वर्कर्स को झूठे ख्वाब दिखाते रहोगे। ये जो एक लफ्ज़ है जो बड़ा मुझे भी अजीब लग रहा, क्या तुम्हारा भी ये केस नैब के सुपुर्द ना कर दिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अवामुल नास के सामने आ जाए, सवालिया निशान। ये जो खबर बाहर आई है और जो मेरे पास खबर है कि जो मेरी भी जायदाद काम कर रही है कि यहाँ एक शादी के दौरान जो है ये इश्तहार जो है ये तकसीम किया गया था, शादी के टेबलों पर रखा गया था, और जहाँ तक ये भी खबर है कि इस वक्त के जो मौजूदा अवामी तरीके या मिनाजुल कुरान के बड़े जिनके पास बड़ी पोस्ट है ये लिखने वालों में वो भी शामिल थे। मेरी मुराद है शेख इशफाक साहब। मैं चाहूँगा शेख साहब, माजत के साथ अगर ये आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप इसकी तरदीद कर लें कि आप भी उन ये लिखने वालों में आप भी शामिल थे। अगर आप इसकी तरदीद करना चाहें, इस पर आकर आप बात करना चाहें, तो अदारा आपकी आवाज़ का مائک میں ان کے لیے حاضر ہے، یا جنجوا صاحب نے جو باتیں کی آپ بات کرنا چاہیے، یا میں ناجل قرآن کا کوئی ساتھی ہمارا کوئی بھی بات کرنا چاہے اس کے لیے
میرا چیلنج ہے میں 500 پاؤنڈ اسے نام دوں گا، جو بندہ مجھے یہ بتا دے کہ مینہاج ماڈل سٹی کے نام سے ہر ملک سے کتنے پیسے اکٹھے ہوئے، وہ پیسے کس ذرائع سے پاکستان پہنچے، اور جب مینہاج ماڈل سٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ پیسے کس مد میں ری انویسٹ کیے گئے، اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ جو بندہ یہ مجھے معلومات ہے میں اسے 500 پاؤنڈ آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ اسے انعام دوں گا،
اور میں یہ
کسی میں ضرورت ہے تو میرا یہ چیلنج قبول کر لے۔
ججوا صاحب، یہ 500 پاؤنڈ میں بولوں گا کہ ادارہ میں ناظر قرآن کو دے دیں، اگر آپ جیت جائیں تو
میں یہ بھی میں دے دوں گا، اگر میں جیت گیا پھر بھی میں انہیں دے دوں گا، اور یہ میں دیکھیں میں یہ بہت بڑا اعلان ہے آپ کے وہاں پہ، مولانا عبدالستار صاحب بیٹھے ہیں، باقی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ حسن ہیں، علامہ حسن ہیں، اور باقی سارے لوگ ہیں، یہ میرا چیلنج ہے، ان میں سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مجھے ڈاکومینٹڈ پروف کے ساتھ یہ ساری معلومات دے دے، میں 500 پاؤنڈ اسے انعام دوں گا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مینہاج القرآن ساری زندگی لگ جائے یہ کبھی بھی میرا یہ چیلنج قبول نہیں کرے۔
جنجوا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، لیکن جاتے جاتے ایک سوال، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی بات کی، اور میں چودھری صاحب کا ایک انٹرویو بھی سن رہا تھا، اور ایک کلپ بھی میرے پاس موجود ہے جو گوگل کی طرف سے مجھے ملا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا مولانا صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم نے کچھ دے کر بھیجا، جب سوال کسی صحافی نے آگے سے سوال کیا تو ہم نے مولانا صاحب کو کچھ دے کر بھیجا ہے، تو کیا یہی جو ہے این آر او تو دے کر نہیں بھیجا؟
نہیں، این آر او نہیں دے کر بھیجا، مولانا فضل الرحمان کے اوپر تو کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں۔
نہیں نہیں نہیں، میرا اشارہ جو ہے کہ اب جو میاں صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ لے کر گئے ہیں، ویسے نہیں گئے وہ، مولانا صاحب نے
کیا؟ نہیں 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 نہیں، وہ اشارہ اور ہے، وہ اشارہ پاکستان میں سول سپریمیسی کا ہے۔
سول سپریمیسی، بالکل آپ کی بات میں وزن ہے،
وہ سول سپریمیسی کا ہے۔
تو یہ جو اپنے چودھری صاحب اتنی بیماری کی حالت میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، پھر مولانا صاحب واپس آئے، دو قسم کا حلوہ کھایا، شوگر فری حلوہ کھایا، میڈیا کی زینت بنا یہ حلوہ، اور اس کے بعد پھر دونوں بھائی جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور محترم چودھری شجاعت صاحب اس بیماری کی حالت میں مولانا کو کامیاب دھرنے کی مبارکباد بھی دینے گے، میں چاہوں گا ذرا ایک منٹ اس کو بھی دیں۔
یہ باتیں درست ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ چودھری برادران جب وہ کسی سے ملتے ہیں، جب وہ کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ پیغام رساں ہوتے ہیں، یہ بات میں یہیں پہ رکھوں گا کہ وہ پیغام رساں ہوتے ہیں، اور پیغام رساں جو بھی بات لے کے آتا ہے اپنی بات نہیں ہوتی، وہ کسی کی بات ہوتی ہے، کسی اعلی اتھارٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ دے کے بھیجا تو اس کا مطلب یہ درست ہے، وہ دے کے بھیجا، اگر نہ ہوتا تو مولانا فضل الرحمان جانے والے بھی نہیں تھے، وہ لے کے کچھ گئے ہیں، اور وہ جو لے کے گئے ہیں وہ آثار آپ نے دیکھ لیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک فیئر ٹرائل ہونا شروع ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جو کرپٹ لوگ ہیں وہ نون لیگ میں ہوں یا پیپلز پارٹی میں ہوں اور یا تحریک انصاف میں، پیپل پارٹی اور نون کے ساتھ اب ان کی بھی باری آنے والی ہے۔
جنجوا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، میرے پاس یہ 7 صفحے کا خط ہے بلکہ ایک پیپر ہے 7 صفحے کا، اگر مجھ سے کوئی لینا چاہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ شیخ شفاق صاحب کا ذکر ہوا، میں باقیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا چونکہ وہ ذمہ دار انسان ہے، شریف آدمی ہے، وہ اگر اس کو ڈینائی کرنا چاہیں، آ کر اس مائک ان کے لیے حاضر ہے، یہ 7 صفحے جو ہیں اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں اور اس کو رد کر سکتے ہیں، اپنا جواب دے سکتے ہیں، اور جنجوا صاحب
یہ بھی پھر پوچھ رہے ہیں نا، آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ آپ فیئر اپرچونیٹی دیں نا، آپ مولانا شاہد صاحب کو بھی فیئر اپرچونیٹی دیں، اور ان سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ جو
غالباً اس دور میں میرا خیال ہے وہ نہیں تھے جب 2003-04 میں غالباً، پتہ نہیں سرائے صاحب،
لیکن وہ دوسرے واقعے میں تو وہ موجود ہے نا، کہ وہ جو قربانیوں کے پیسے رکھے ہوئے، اور وہ قربانیوں کے پیسے
انگلینڈ سے ان کا ٹکٹ دے دو،
تو آپ کو پتا راجا بابر صاحب بھی اس میں اس کے گواہ ہیں کہ وہ پیسے قربانیوں کے نہیں دیے ہوئے، کوئی قربانی ادا نہیں کی گئی، تو وہ پیسے آپ نے اس سے قربانیوں کے پیسے سے ٹوائلٹیں بنوائی ہیں یا اس سے کیا کنسٹرکشن سے کام کیا ہے یا کیا کیا ہے؟
اچھا، راجہ بابر صاحب بھی وٹنس ہیں؟
جی،
راجہ بابر صاحب بھی وٹنس ہیں قربانیوں کے؟
ہاں جی، وہ وٹنس ہیں، اور ان سے پوچھیں، اور آپ انہیں بھی اپرچونیٹی دیں، آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں اپرچونیٹی بھی دیتے، اور میں آپ سے پرزور احتجاج کرتا ہوں کہ آپ انہیں اپرچونیٹی دیں، और इन्हें आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर मधु करें।
ये बिल्कुल आनेर आपकी बात जा रही है, हजारों लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए माइक हाजिर है, दरवाजे खुले, हम चाय भी पिलाएंगे, काफी भी पिलाएंगे, बिस्किट भी, हमारे सारे साथी उनकी खिदमत भी करेंगे।
लेकिन अगर वो आपको चैलेंज कबूल करना चाहें जो मैंने बात की है या ये कुर्बानी के वाले
जो भी चैलेंज कबूल करें, जो भी बातें, उनके लिए ये माइक हाजिर है।
आपने फिर उन्हें ओपन प्लेटफॉर्म देना है और उनकी बात जो है
बिल्कुल, जब तक वो बोलते रहेंगे हम अपनी जबान नहीं खोलेंगे,
सेंसर नहीं करनी है, आपने उनकी बातें आवाम तक पहुंचानी।
बिल्कुल जी, ऐलान करें, ऑन एयर करेंगे, वो खुद उसको सारी चीजों को बेशक रिकॉर्ड भी कर लें।
बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आपको और सब
बहुत शुक्रिया जंजुआ साहब, आपने कीमती टाइम हमारे साथ, बहुत अल्लाह हाफिज। समाइन, ये थे शायद जंजुआ साहब जो बरतानिया की फजाओं से हमारे साथ थे। समाइन, अगर कोई भी जवाब देना चाहे तो अदर आपकी आवाज़ का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, उनका भी लाइव प्रोग्राम होगा, वो लाइव बात करें, कोई चीज़ उनको रोका टोका नहीं जाएगा और अपना जो है वो बयान जो करना चाहें बिल्कुल उनके लिए जितना टाइम भी उनको दरकार होगा उस टाइम को करें, हम कोई सवाल नहीं करेंगे, पहले वो अपनी चीज़ें सारी रखें, जो हमारे पास चीज़ें वो हमसे लेना चाहते हैं तो हम उनको भी देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास जो पड़ी हुई है वो हमसे, हमारा रिकॉर्ड जो है वो लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं, लेकिन जवाब देना चाहें तो ये माइक जो है अदर आपकी आवाज़ सारे माइक उनके लिए हाजिर हैं, ओपन है उनके लिए माइक, और आकर अपना जो है वो कर सकते हैं, फ़ोन करें, डायरेक्ट आएँ, जो मर्ज़ी करें, आप हमारे मेज़बान बने, मेहमान बने, हम आपकी खिदमत भी करेंगे, हमारे साथी आपके लिए खाना भी बनाएंगे, हमारे साथी आपके लिए पिज़्ज़ा भी लाएंगे, हमारे साथी आपके लिए सोडा वैन मिठाई भी लाएंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस माइक पर जो है आप आएँगे तब बात बनती है।